أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میری ایشور سے ہی آشا ہے کہ آپ سبھی اپنے جیون میں سکھی اور پرسن ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کاریکرم میں شک کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ہماری بات چیت کا آدھار وہ شنکائیں ہیں جو نماز میں ہم کو ہوتی ہیں یعنی نماز سے سمبندھت شنکاؤں کے بارے میں ہم بات چیت یہاں پر کر رہے ہیں ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم کو جہاں پر سماپت کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے ان شنکاؤں کے بارے میں جو نماز میں ہوتی ہیں اور ماننے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی ان کے لیے ہمارے فقہا نے اور اسلام نے کچھ قانون بتائے ہیں کہ جن کے آدھار پر شنکاؤں کا نوارن کرتے ہوئے نماز کو صحیح کیا جا سکتا ہے اسی بات چیت کو ہم یہاں پر آگے بڑھائیں گے ایک دو مسئلے آپ کے سامنے اسی سے سمبندھت بیان کریں گے ہم نے انتم جو بات چیت جہاں پر سماپت کی تھی وہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو چوتھی اور پانچویں رکعت میں شک ہو تو وہ کیا کرے گا تو یہاں پر ہم نے دو چیزیں بتائی تھیں کہ ایک شک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قیام کی حالت میں ہے تو کیا کرے گا اور دوسرا جب وہ دونوں سجدے سماپت کر چکا ہے تو کیا کرے گا تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر قیام کی حالت میں اس کو شک ہوتا ہے کہ چوتھی اور پانچویں ہے تو وہ وہیں پر بیٹھ جائے گا چوتھی رکعت سمجھتے ہوئے نماز سماپت کرے گا اور اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے یا دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھے گا اور اگر یہی شک یعنی چار اور پانچ کے بیچ میں شک ہوتا ہے اس کو دونوں سجدے سماپت کرنے کے بعد تو اس کو چاہیے وہ چار سمجھتے ہوئے نماز کو وہیں پر سلام پڑھ کے سماپت کر دے اور اس کے بعد دو سجدے سہو کر لے اس کے بعد اگر کسی انسان کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہا تھا اس کو یہ شک ہوا کہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں وہ تیسری ہے یا پانچویں یعنی تین اور پانچ کے بیچ میں اس کو شک ہوا اور شک کی استھتی کیا ہے جس سمے اس کو شک ہو رہا ہے وہ کھڑا ہوا تھا یعنی قیام کی حالت میں تھا قیام کی حالت میں اگر ایک نمازی کو شک اس بات کا ہو کہ وہ تیسری رکعت میں ہے یا پانچویں رکعت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو چوتھی سمجھے یعنی چوتھی رکعت نماز سمجھ کے نماز کو سماپت کر دے سلام پڑھ لے اور اس کے بعد دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھے تیسری اور پانچویں میں شک ہوا قیام کی حالت میں چوتھی سمجھیں گے اور اس کے بعد دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی اور اگر نماز پڑھتے سمے کسی کو اور آگے شک ہو جائے نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے سمے اس کو شک یہ ہوا کہ پتہ نہیں جو نماز جس رکعت میں وہ ہے وہ تیسری ہے چوتھی ہے یا پانچویں اس میں تین شک یعنی نہیں پتہ اس کو تیسری ہے چوتھی ہے یا پانچویں ہے اس کی استھتی یہ ہے کہ قیام کی حالت میں قیام کی استھتی میں شک یہ ہوا کہ نماز جو رکعت ہے وہ تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے تو ہمارے فقہا یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو چوتھی سمجھے چوتھی رکعت نماز سمجھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو سلام پڑھ کے سماپت کر دے اور اس کے بعد دو رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے اور دو ہی رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھے اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر انسان کو اور آگے شک ہوتا ہے کوئی بہت بڑا شک کرنے والا تھا اس کو نماز پڑھتے سمے یہ شک ہوتا ہے کہ جو رکعت وہ پڑھ رہا ہے وہ پانچویں ہے یا چھٹی یعنی چوتھی سے بھی آگے نکل گیا اس کو شک یہ ہوا کہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہے یا چھٹی رکعت پڑھ رہا ہے قیام کی حالت میں تو اگر قیام کی حالت میں اس کو شک ہوتا ہے کہ پانچویں پڑھ رہا ہے چھٹی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو چوتھی رکعت پڑھے سمجھے چوتھی رکعت کو سمجھتے ہوئے نماز کو سماپت کر دے سلام پڑھ لے اور اس کے بعد دو سجدے سہو کرے اور اس کی نماز صحیح ہوگی تو نماز میں وہ سندیہ وہ شنکائیں جو مانیہ تھیں اور جن کے بارے میں کچھ قانون بتائے گئے جن سے اس نماز کو صحیح کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کسی کو شک ہو سکتا ہے الگ الگ پرکار کے شک ہو سکتے ہیں اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے شک سے سمبندھت مسئلوں کو دیکھے اور اس کے انوسار اپنی شنکا کا نوارن کرے تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں شک سے سمبندھت جو ہم نے آپ کو سنکھپت روپ سے بیان کیا उसके बाद कुछ इसे कहा जाए कानून है शंकाओं से संबंधित, जिसको हम आपके सामने बयान कर दें ताकि जिस समय इंसान को शंका होती है वो अपनी शंका का अच्छे से निवारण कर सके। कि जिस समय इंसान को शक होता है किसी नमाज में, पहला कानून ये है कि जिस समय इंसान को नमाज पढ़ते समय वो शक होता है, जो शक सही है यानी मान्य है, तो वो अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है। यानी नमाज़ पढ़ते समय वो शक होता है जो मान्य है, जिसको हमने अभी आपके सामने एक के बाद एक करके तकरीबन 7-8 शक आपके सामने बयान किए, उनमें से कोई एक शक होता है, नमाज़ पढ़ते समय शक हुआ तो वो नमाजी अपनी नमाज़ को तोड़ नहीं सकता है। यानी अगर उसको किसी प्रकार का शक हो, मसलन चौथी और पाँचवीं रकत में शक हो जाए तो उस नमाज़ को तोड़ दे, तोड़ नहीं सकता है, बल्कि उसको चाहिए उस शंका के अनुसार जो मसला बयान किया गया है उसके ऊपर अमल करे और उसके अनुसार अपनी नमाज को सही करे। यानी अगर उसको नमाज एहतियात कही गई है तो नमाज एहतियात पढ़े, अगर सजदे सहो कहा गया है तो सजदे सहो करे वगैरह, इस प्रकार की चीज़ कार्यों को अंजाम दे। जैसा कि हम अपने समाज में भी देखते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शकियात के जो मसले हैं, शक के जो मसले हैं नमाज में, वो बहुत कठिन हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अमल करना बहुत कठिन है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर हमको शक हो जाए इस प्रकार का तो बेहतर यही कि नमाज को तोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कार्य सही नहीं है। इंसान को अगर सही शक में से कोई शक होता है तो वो अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है, और अगर नमाज को तोड़ देता है तो उसने पाप किया है, वो पाप का भागीदार होगा। तो इसके एक तो ये कानून हुआ। उसका दूसरा कानून जो हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं वो ये है तो कि अगर इंसान को नमाज पढ़ते समय शक हो जाए, किसी भी रकत के बारे में शक हो, तो वो फौरन उस शक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसको चाहिए, जिसको हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था, कि उसको चाहिए थोड़ी देर ठहरे, सोचने की कोशिश करे, ध्यान लगाए, शायद उसको याद आ जाए। अगर उसको थोड़ी सी भी संभावना हो जाती कि मसलन हमने तीसरी रकत में थे या चौथी रकत में थे, तो उसी के अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ा दे। यानी अगर उसको याद आ जाता है तो उसी के अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर फिर भी शंका बाकी रह जाती है, तब वो अपनी शंका का निवारण करने के लिए और अपनी नमाज को सही करने के लिए बताए गए कानून के ऊपर अमल करते हुए अपनी नमाज को सही करेगा। और तीसरा कानून जो हमको इसी शंकाओं में हो सकता है वो ये है कि जिस समय इंसान को शंका होती है तो वो अपने नमाज की रकत को हमेशा आगे की तरफ रखेगा, जब तक कि वो 4 रकत से आगे न निकल जाए। यानी जैसे अगर 3 और 4 रकत में शक होता है तो वो ये समझेगा कि हमारी रकत 4 है, अगर 2, 3 और 4 के बीच में शक होता है तो वो ये मानेगा कि हमारी जो रकत है जिस समय हम पढ़ रहे हैं वो चौथी रकत है। लेकिन अगर 4 रकत से आगे निकल जाता है, जैसे शक ये हुआ कि चौथी है या पाँचवीं है, पाँचवीं है छठी है, इस प्रकार का अगर शक होता है वो तो वो चौथी पर अपनी बिना रखेगा और अपनी नमाज को चौथी मानेगा। उसके बाद जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब शंका होती तो उसके निवारण का एक तरीका ये है कि बाज़ स्थानों पर नमाज एहतियात पढ़ी जाती है, नमाज एहतियात खड़े होके या नमाज एहतियात बैठ के। यहाँ पर हो सकता है हमारे दर्शकों के जहन में यह सवाल उठे कि नमाज एहतियात क्या है। नमाज एहतियात अगर देखा जाए तो उस नमाज को कहते हैं जो नमाज में होने वाली संभावित त्रुटियों, संभावित कमियों को पूरा करने के लिए होती है। इसीलिए जब हमें शक होता है कि नमाज हम तीसरी रकत है या चौथी रकत है, तो चूंकि यहाँ पर एक रकत की ये संभावना है कि एक रकत कम हो, जैसा कि हमने कहा कि अगर शक होता है इंसान को नमाज तीसरी है या चौथी है, तो हमने कहा वो चौथी रकत को समझते हुए नमाज को समाप्त कर दे। उसके बाद हमने कहा एक रकत नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। क्यों कहा? क्योंकि बहुत संभव ये है कि जिसको हमने 4 रकती नमाज समझा है और 4 रकती नमाज समझ के समाप्त कर दिया, वो 3 ही रकत रही हो, इसलिए जो एक रकत कम रह गई है उसकी कमी को ये हमारी नमाज एहतियात पूरा कर देगी। उसके बाद जैसे हमने बताया था कि बाज़ स्थानों पर सजदे सहो किया जाता है, जैसे 5वीं और 6वीं रकत में अगर शक हो जाए कि हमारी रकत 5वीं है 6ठी, तो सजदे सहो क्यों किया जाता है? सजदे सहो उन स्थानों के लिए जहाँ पर हमको संभावित ज़्यादती का वो होता है कि हमको लगता है शायद कुछ ज़्यादा हो गया, इस स्थान पर ऐसे स्थानों की त्रुटि को दूर करने के लिए यहाँ पर सजदे सहो वगैरह किया जाता है। और जहाँ पर एक और जो बात बयान किया जाता है वो ये है कि जिस समय नमाज एहतियात 2 रकत वाजिब होती है, जैसे कि हमने कहा बाज़ स्थानों पर ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़ना होगा, तो अगर किसी इस इंसान के लिए 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर वाजिब हो तो वो उसकी जगह पर 4 रकत बैठ के नहीं पढ़ सकता है। जैसे कि हमने बाज़ मसलों में बताया था कि 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर, 2 रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े, तो इस कानून को उस जगह पर लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ पर 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर वाजिब हो रही है। जैसे कि अगर हमको दूसरी और चौथी रकत में शक होता है जो है 2 सजदे समाप्त होने के बाद, तो हमारा ये है कि हम 2 रकत नमाज एहतियात पढ़ें, तो यहाँ पर चूंकि 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होने के लिहाजा यहाँ पर हम 4 रकत नमाज एहतियात बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि हमारा दायित्व ये है कि हम 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर ही पढ़ें। तो ये वो कानून थे, वो जो मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए शंकाओं से संबंधित, यानी जब हमको शंका होती है तो हम उसका निवारण कैसे करें और अपनी नमाज को कैसे सही करें। तो जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही ये बात बताई थी कि जब हमको रकत के बारे में, नमाज की रकतों के बारे में शक होता है, तो ये शक कई प्रकार का होता है। एक शक वो है जो हमारी नमाज को बातिल कर देता है, जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में बताया। उसके बाद एक शक वो है जो नमाज को बातिल नहीं करता है, मान्य है, यानी उसके लिए कुछ कानून, कुछ चीज़ें बयान की जिसको हमको करना होता है, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले बताया। उसके बाद एक इसी नमाज की रकतों में एक शक वो है कि जब उस शक को मान्य नहीं माना जाएगा, यानी क्या मतलब, यानी यह है कि जब उसको इंसान को शक ये होता है तो वो अपने शक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा बल्कि वो अपनी नमाज को आगे बढ़ा देगा। वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर अगर इंसान को शंका होती है, इंसान को शक होता है तो अपने शक पर ध्यान नहीं देगा या उसका शक मान्य नहीं होगा, वो कौन कौन से हैं हम आपके सामने अभी बयान कर रहे हैं। सबसे पहला स्थान कि जब इंसान को शक होता है और अपने शक को मान्य नहीं मानेगा, अपने शक पर ध्यान नहीं देगा, वो शक है जब इंसान उस स्थान से गुजर चुका हो। जैसे कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में जब हम ये बात कर रहे थे कि इंसान को अगर नमाज के किसी अंश, किसी जुज़ के बारे में शक हो कि उसने वो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी उस स्थान से निकलने के बाद, तो अगर स्थान को आगे निकल स्थान से आगे निकलने के बाद उस चीज़ के बारे में शक होता है तो अपने शक पर ध्यान नहीं देगा। जैसे जैसे कि अगर हम रुकू में पहुंचने के बाद ये शक करें कि हमने अलहम्द का सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या हमने दूसरा सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो चूँकि हम उस स्थान से गुजर चुके हैं और रुकू में पहुँच चुके हैं इसलिए हमको अपने उस शक के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा। दूसरा शक जहाँ पर हम अगर शक होता है तो हम अपने शक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे बल्कि हमारा शक ऐसा ही होगा जैसे शक नहीं था। किस समय? जब इंसान को नमाज पढ़ने के बाद शक हो, यानी सलाम पढ़ चुका है, सलाम पढ़ने के बाद कुछ शक हुआ, मसलन शक हुआ जो नमाज़ पढ़ी थी वो सही थी या नहीं थी, या मसलन उसने सूरह हम्द पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर सलाम कर पढ़ने के बाद उसको शक होता है तो उसको अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और ये शक उसका मान्य नहीं होगा। तीसरा स्थान जहाँ पर इंसान को शक अगर हो तो वो अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देगा, ये उस व्यक्ति के लिए जो बहुत अधिक शक करता है, हर कुछ समय बाद उसको नमाज में शक होता रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत अधिक शक होता है, बहुत अधिक शंकाएँ होती हैं नमाज में, उसको अपने शक, अपने शंकाओं के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसका शक और संदेह मान्य नहीं होगा। उसके बाद का स्थान जहाँ पर हम अगर शक करते हैं तो हमारा शक मान नहीं होगा, ये उस समय का है जब नमाज जमात से हो रही हो, इमाम और मामून में से किसी एक को शक हो, या इमाम को शक हो या मामून को शक हो, तो अगर इमाम या मामून में से किसी एक को शक होता है तो उसका शक मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को याद है, वो बता सकता है, इसलिए उसका शक मान्य नहीं है और इस शक के ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो शक इंसान का मान्य नहीं है और जिसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए वो ये है कि जब इंसान को मुस्तहब नमाज़ों में शक हो, अगर इंसान को मुस्तहब नमाज़ों में शक होता है तो उसका शक मान्य नहीं होगा, उसको अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये वो शक थे जो हमने आपके सामने बयान किए जिसमें इंसान को अपने शक के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अगर हम आज अपने इस प्रोग्राम का सारांश बयान करना चाहें तो हमने सबसे पहले आपके सामने कुछ वो शंकाएं बयान की जिसका निवारण कुछ विशेष तरीक़ों से किया जाता है, उसके बाद कुछ कुल्ली कानून बनाए आपके सामने जिन कानून के सहारे से हम अपनी नमाज को सही कर सकते हैं, उसके बाद हमने आपके सामने कुछ वो शंकाएं बताई जिन शंकाओं पर इंसान को अमल नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी वो शंकाएं मान्य नहीं है। इसके अलावा शक से संबंधित, शंकाओं से संबंधित और भी मसले हैं, इस इंशाल्लाह उनको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।